الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الرسول الثقلين محبوب رب المشرقين المغربين جد الحسن والحسين ابو القاسم محمد. ولا اهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا طالب و بے دم المختول بے کربلا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. عزادارن امام درے حسین نیو جرسی کی یہ تیسری مجلس ہے 1422 ہجری 2020 کی جو آن لائن ہو رہی ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑا آنر ہے کہ ہم کو یہ سعادت ملی کہ ہم محرم میں حسین کا ذکر کر سکیں. دوستو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو ہم کر رہے. آپ کو جو یہ موقع ملا, جیسے بار بار اعلان ہو رہا کہ آن لائن بھی مجلس ہو رہی, آن سائٹ بھی مجلس ہوگی, ایسے ماحول میں کہ جب کہ ساری دنیا لاک ڈاؤن ہے, ساری دنیا لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود ذکر حسین اسی شان سے ہو, یہ سوائے تائید امام کے اور کچھ نہیں. یہ میرے مولا کی تائید ہے, مولا کی نظر کرم ہے. یہ زمانہ بھی گزر جائے گا انشاءاللہ, آئندہ سال اسی شان سے مجلسیں ہوں گی جس شان سے ہمیشہ ہوتی تھی. انشاءاللہ مولا آپ سب کو سلامت رکھے آئندہ سال تک, اور ہر بیماری ہر مرض سے محفوظ رکھے. یہ جو ذکر حسین کر رہے یہی آپ کی حفاظت کرے, یہی آپ کی حفاظت کریں گے, اور کوئی چیز حفاظت کرنے والی نہیں ہے. یہ عقیدے کو رکھو, اس یقین کو رکھو کہ امام کے علاوہ ہم کو کوئی بچانے والا نہیں ہے. ہماری کوئی طاقت نہیں ہے, ہماری کوئی قوت نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں ہے ہماری کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں. ایک سیکنڈ کے لیے ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, فریکشن آف سیکنڈ کے لیے ہم پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے 1000 واقعات ہیں, وقت پڑیا ختم ہو جاؤ گے, ایک لمحے میں ختم ہو جاؤ گے. لیکن اگر بچے ہوئے ہیں تو یہ عزائے حسین کا صدقہ ہے, اس لیے کہ تم کسی کی دعا سے دنیا میں آئے ہو. وہ اس مظلوم ماں کی دعا ہے. آپ اس کو ایکسیپٹ کرو, اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو. صرف جو بچے ہوئے ہیں مادر حسین کی دعا ہے, شہزادی کونین کی دعا ہے کہ بی بی ہمارے محافظ ہیں, بی بی کے علاوہ کوئی محافظ نہیں, یا حسین ابن علی ہے. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. یہ ایسا ورد ہے دوستو, میری ماں بہنوں سے بھی کہہ رہا کہ اتنا اس کی کثرت سے تلاوت کرو کہ مولا آپ ہمارے شافی بن جائے, آپ ہمارے شافی. جب تو امام کے لیے دعا کرتے, اپنے لیے دعا کرتے کہ آپ میرے شافی ہو جائے, تو حسین ابن علی آپ کے شافی. یہاں پہ نہیں, یہاں تو ہے, مرنے کے بعد بھی حسین تمہارے شافی ہو جائیں گے. اس لیے کہ دوستو ہر چیز ہماری یہیں رہ جائے گی, کوئی چیز ہم کیری کرنے والے نہیں ہیں. یہ بڑے بڑے پالیسز, یہ بینک بیلنس, یہ ہر چیز سب یہیں رہ جائے گی. جائیں گے وہاں پہ تو سوائے شفاعت اور حسین کے کچھ نہیں. بیٹا نہیں پوچھتا یار, بیٹا نہیں پوچھتا, لے کے جا کے دفن کرے گا, پیٹ بتا کے باہر آ جائے گا. یہ میں نہیں بول رہا, میرا مولا بول رہا کہ اس لمحے سے ڈرو کہ جب تمہارا یور اون سن مولا بولتے ہیں کہ تمہارا بیٹا تم کو لٹائے گا اور ٹرن کرے گا, اپنے آپ کو پیٹ بتا کے باہر آئے گا. تم نیچے سے پکارتے رہو گے کہ او مائی سن ڈونٹ لیو می الون, لیکن اس کی آواز, تمہاری آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچے گی. تم ہوں گے, تمہارے اعمال نامہ ہوگا. یہ مولا کا پورا سرمن ہے, اور آپ غور کر کے دیکھیں بالکل ایسی ہوتا ہے کہ جیسا امام نے بتایا. تو اس وقت اس جگہ پر جو آج آپ در حسین میں مجلسیں کر رہے, یا کسی امام بارگاہ میں آپ جو مجلسوں میں جا رہے اور ذکر حسین کر رہے نا, یہی چیز وہاں پہ کام آنے والی ہے. اس کو ایزی مت لو. ٹھیک ہے لاک ڈاؤن میں ہم بیٹھے ہوئے, لیکن اپنے گھروں کو عزا خانہ بنا لو, گھروں میں فرش عزا بچھاؤ. اس لیے کہ اب یہ مت سمجھو کہ اگر تم امام بارگاہ جاؤ گے تو وہیں تم کو برکتیں ملیں گی. نہیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں جاؤ گے تو 100% برکت ملے گی. لیکن اگر لاک ڈاؤن ہے, امام بارگاہ نہیں جا سکتے, آپ گھر میں بیٹھ کے مجلسیں کر رہے ہیں, تو یہ बच्चों के साथ करो, मैं बार बार इस पर स्ट्रेस कर रहा इसलिए कि मैं देख रहा कि जो हालात बदल रहे, अगर आप बच्चों को बताओ, मासूम बच्चों को लेके बैठो, फर्श अज़ा बिछाओ, चेयर्स पे मत बैठो, कोई बुजुर्ग है तो वो ठीक है, जो नहीं बैठ सकता वो ठीक है, लेकिन हम भी अगर सोफे पे बैठ कर रिलैक्स होकर मजलिस नहीं सुनते, मजलिस सिर्फ एक घंटे की है, लेकिन ये मजलिस तुम्हारी डेस्टिनी को बदल रही, ये मजलिस तुम्हारी तकदीर को बदल रही, ये मजलिस तुम्हारे रिस्क को खोल रही, ये मजलिस तुमको बीमारियों से बचा रही। कितनी ऐसी बीमारियां हैं जो कल जाहिर हो सकती लेकिन तुमने हुसैन का जिक्र किया फर्श अज़ा पे बैठ के, तो वो फर्श अज़ा की बरकत ऐसी है कि उस बरकत से तुम्हारे जिस्म की बीमारियां दूर होती। इसमें कोई ताज्जुब मत करो कि इसलिए कि मौला हुसैन उस शख्सियत का नाम है, हुसैन उस पर्सनालिटी का नाम है कि इमाम हुसैन का खून जहाँ पे गिरा जिस ज़मीन के ऊपर वो एक जंगल था, उस जंगल को हुसैन ने अपने खून से ला इलाहा इल्लल्लाह का अबदी पैगाम लिखकर जमीन को रश के खुद बना दिया। मैं क्या बोल रहा आप समझ गए मेरी बात, रश के खुद बना दिया, जन्नत बना दिया उस जमीन को, वरना वो जमीन एक जंगल बियाबान जंगल था, फातिमा के लाल का वो असर कि जहां पे खून गिरा उस खून को जन्नत बना दिया, उस खाक को खाके शिफा बना दिया। दोस्तों मैं यूं ही नहीं कह रहा, आप सोचो कि खाके शिफा ऐसी बनी, ऐसी वो खाक खाके शिफा बनी कि दुनिया में भी अगर कोई शख्स हाथों में लेकर खाके शिफा को हुसैन का वास्ता देकर दुआ मांगे तो उसकी दुआ कबूल हो, और मरने के बाद प्लीज और से सुनो, आप इसको इजी मत लो, दरे हुसैन की तीसरी मजलिस में मैं ये लाइव बोल रहा कि जिस जगह पे जिस खून गिरा वो खाक को लेकर अगर दुआ मांगो तो कभी दुआ रद्द नहीं होती। दूसरी चीज, जब उस खाक को तुम अपनी ग्रेव में डालोगे, लहद में डालोगे, तो उस लहद में कभी अजाब नहीं आता जिस लहद में खाके शिफा होती है। आप समझ लें मेरी बात, ये सब आप, ये अकीदे की बातें नहीं है, ये रियलिटी है, या आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहा, ये वो इमाम के जुमले है, ये वो इमाम के जुमले जिसको दुश्मन ने सादिक कहा, जिसको दुश्मन ने सादिक कहा, वो छठे इमाम इशाद करते कि मेरे जद की लहद की खाक को किसी पाक कपड़े में रख कर जमीन रखो लहद में, उस लहद में कभी अजाब नहीं होगा। जाके पूछो उलमा को कि उलमा भी आपको इसीलिए आज करबला में कि जब भी कोई मरता है तो खाके शिफा कफन जब लाते हो ना तो कफन के साथ खाके शिफा इसीलिए दी जाती कि खाके शिफा तुम्हारा वसीला बनेगी, खाके शिफा तुम्हारे लिए शिफा बनेगी, खाके शिफा अगर होगा तो अजाब नहीं होगा। तो आप सोचो कि जिसकी खाक में इतना असर हो उसके जिक्र में कितना असर होगा। आप समझ रहे मेरी बात कि इसके लिए प्रिपरेशन करो। मुहर्रम को बार बार मैं बोलता कि प्रैक्टिस नहीं है, आप बच्चों को बना जनरेशन को प्रोटेक्ट करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर नहीं करोगे तो बाद में तुम रिग्रेट करोगे, और ऐसा रिग्रेट करोगे कि रोगे कि काश मैं अपने बच्चों को तैयार कर लेता, काश मैं अपनी औलाद को तैयार कर लेता, और जिन्होंने तैयार किया उनके बच्चे करते रहे जिक्र, जब तक जिक्र करते रहे उनके माँ बाप को उसका अजर मिलता रहा। तो हमेशा याद रखो कि ये जो लॉकडाउन का जमाना है, इस लॉकडाउन में जमाने में हमारी जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी है कि अपने घर में फर्श ऐसा बिछाओ और न्याज का इंतजाम करो, तबरुक करो। क्यों तबरुक करो? जो चीज हुसैन से निस्बत हो जाती उसमें शिफा हो जाती। आप और दूसरी चीज मैं ये बोल रहा कि बच्चों को आदत होगी ना, वो लोग पूछेंगे कि व्हाट इज दिस, तो बोलो कि बेटा ये मजलिस की नियाज इमाम हुसैन के नाम पे खा, तो वो जनरेशन बाद जनरेशन खाएगा, वरना बच्चा नहीं खाएगा, छोड़ देगा। इसलिए कि ये हमको बताया गया कि अपनी औलाद को अल्लाह हुम्मा इन्नी असलुका बेहक्के मोहम्मद वाले मोहम्मद बोल के दुआ करते हो। उसके बाद अगर ये नहीं करोगे तो स्टेज जाएगा कि खत्म हो जाएगा। जमाने का इमाम बार बार कह रहा आईना ताले वो बेदमेल मख्तूल है करबला, जमाने के इमाम की नुसरत के लिए आगे बढ़ना है ना, करबला के साथ ही जमाने के इमाम की नुसरत है, करबला के साथ ही जमाने के इमाम की नुसरत है। करबला जब और सजाई जाएगी तो जहूर इमाम के बाद ही आपको वो ख्वाहिश पूरी होगी, जहूर इमाम के बाद ही आपको जो है वो सारी दुआएं कबूल होंगी जिसकी दुआ आप कर रहे हैं, फया लेतनी खुंतो माकुम फाफूजा माकुम जो ज्यारत में बोल रहे वो जहूर इमाम के बाद ही शुरू होगी। लेकिन फिर मैं वही बोलता कि वही इमाम को ज्वाइन करेगा, वही करबला वालों का साथ होगा जो करबला वालों का साथ देगा, जो इताअत हुसैन करेगा, जो हुसैन की बातों पर अमल करेगा, जो तालीमात आले मोहम्मद पर रहेगा, उसी को मौका मिलेगा, वरना उसको मौका नहीं मिलेगा जो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारेगा। अगर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारोगे तो फिर तुम हुसैन के साथ नहीं देगी। आप सब बोलते लब्बैक या हुसैन, हर आदमी बोलता लब्बैक या हुसैन, बेहतरीन नारा है लब्बैक या हुसैन का, लेकिन ये कोई गारंटी है कि मेरी लब्बैक को इमाम हुसैन कबूल करे? इज देयर एनी गारंटी? आप बोल सकते कि यस मैंने कहा लब्बैक मौला हुसैन ने कबूल कर लिया? नो, कोई गारंटी नहीं है। वही गारंटी होगी कि तुमने अगर मौला के लिए किया है कुछ, अगर तुमने प्लान किया, कुछ सोचा भी है तो मौका मिलेगा। अगर कुछ नहीं सोचा, वो चीजों में, वो रास्ते में चले, इसलिए कि कंडीशंस है, हर चीज में कंडीशंस अप्लाई होती है। जैसे नमाज के लिए कंडीशन क्या है? वजू। वजू वाजिब नहीं है, वजू कोई वाजिब अमल नहीं है, लेकिन नमाज के लिए वजू वाजिब हो जाता है। नमाज के लिए वजू वाजिब है, लेकिन अब बगैर वजू के आप नमाज नहीं पढ़ सकते। आमतौर पर वजू वाजिब नहीं है, लेकिन नमाज के लिए वजू वाजिब हो जाएगा। उसी तरह इताअत हुसैन के साथ देने के लिए आपको हुसैन की बातों पे अमल करना वो वाजिब है। जब तक तुम उस पे अमल नहीं करोगे तो मौला हुसैन के लश्कर में जाओगे नहीं। औरत को भी बोल रहा, मर्द को भी बोल रहा, फिक्र करो मैं क्या बोल रहा, सोचो मैं क्या बोल रहा, कि मेरी जिंदगी उड़ जाए और मैं मौला हुसैन के लश्कर में मैं शामिल ना हो। इमाम की इताअत भी मुहर्रम की इंपॉर्टेंस को समझो कि जमाने के इमाम और करबला इमाम की ज्यारत, इमाम के पास जाना एक अजीम चीज का नाम है, अजीब चीज का नाम है दोस्तों। मैं बोलता ना, ऐसी जिंदगी लोगों की गुजर रही, कितनी आसानी से हम अपनी लाइफ को गुजारे। ये लॉकडाउन ने तो हमको झिंझोड़ दिया, झिंझोड़ दिया कि कभी जिंदगी में नहीं सोचा। लास्ट ईयर जब आपने दर हुसैन में मजलिसें की थी, सोचे थे ये बात कि आइंदा साल मजलिसें ऐसी होंगी? हमारे जहन में भी नहीं था ये कि हम कितने कितने सुकून में थे, बिल्कुल रिलैक्स थे, कि हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हुआ। एक लम्हे के लिए भी किसी को ख्याल नहीं आया था कि आइंदा साल मुहर्रम ऐसा होने वाला है। हुआ तो अब क्या करना है? अब हमको देख रहा कि हमको करना क्या है। एक चीज याद रखो, अगर तुमको फिक्र नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला। तो मेरी एक ही ख्वाहिश है कि उस कंडीशंस को देखो। उसमें सबसे पहली चीज जो कंडीशन इन्हें पहली मजलिस में शायद करते हैं, 21 या 22 चीजें, उस चीजों को अपने आप को चेक करना है कि वो 21 चीजें कहीं हमारे पास तो नहीं। पहली चीज रिस्क हलाल के लिए मैंने कहा था, अब उसको रिपीट नहीं कर। दूसरी चीज एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी है जो सबके पास है, वो बीमारी है जलसी की, वो बीमारी है हसद की, जो पहली जमीन के ऊपर, इस जमीन के ऊपर पहली बीमारी कौन सी आई, पहला गुना किसका हुआ, कैसे हुआ? वो हसद से हुआ, जलसी से हुआ। पहला गुना जमीन के ऊपर, चार आदमी थे बस इस जमीन के ऊपर, सिर्फ चार, और से सुनो, सारे तुम्हारे अमल खत्म हो जाएंगे। सिर्फ चार आदमी थे, चार पूरी जमीन के ऊपर, पूरी जमीन के ऊपर चार आदमी में जो पहला जमीन के ऊपर गुना हुआ, उस गुना का नाम है हसद, जलसी। किसने किया था? काबिल ने किया था। शैतान ने पहला गुना कौन सा करवाया? हसद का गुना करवाया। आज हमारे पास हसद नहीं है, हम एक दूसरे से हसद नहीं करते हैं। अगर करते हैं, नहीं करते तो बहुत अच्छी बात, अगर करते हो तो क्या तुम हुसैन के साथ जा सकते थे? क्या तुम करते हो तो तुम मुहर्रम की इंपॉर्टेंस को समझ रहे? ये अय्याम ऐसे है कि इन गुनाहों से अपने आप को पाक करने के अय्याम है। इंपॉर्टेंस ऑफ मुहर्रम ये है, ये गुनाह ऐसे हैं, इन चीजों से अपने आप को क्लीन करने के नाम है। ये 10 दिन अपने आप को रिफाइन करने के दिन है। ये सोचो मैं क्या बोला, कि ये वो बीमारी है, ये वो बीमारी है कि पहला गुनाह जमीन के ऊपर जो हुआ वो हसद का हुआ। काबिल ने हसद किया अपने भाई हाबिल से, एंड क्या हुआ? मर्डर हो गया। ऐसा मर्डर हुआ कि खून बह गया। सोचो हसद का एंड क्या है? हसद कैसा होता? अगर किसी की जॉब अच्छी है तो मुझे हसद हो रही सगे भाइयों से, किसी का पोजीशन अच्छा बन गया, कोई सीईओ बन गया कंपनी का, मुझे हसद हो रही, किसी का बिजनेस ग्रो कर लिया मुझे हसद हो रही, कोई ब्रांडेड ड्रेस पहन के आ गया मुझे हसद हो रही, किसी ने बड़ी गाड़ी ले ली उसे मुझे तकलीफ हो रही। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आपका लेके अल्लाह ने दिया है उसको? अल्लाह के खजाने में कमी है, हुसैन के खजाने में कमी है। अगर हुसैन ने उसको दिया तो आपको नहीं दे सकता, आप भी तो मांगो, उसी अंदाज से मांगो जैसे उसने मांगा है। और ये बीमारी याद रखो कि मासूमीन से लोगों ने हसद किया, मासूमीन ने किसी से हसद नहीं किया, मासूमीन ने किसी से। जब ये बीमारी आज हमारे पास इतनी कॉमन है कि जहां आप जाते इवन मजलिसों में हसद, इवन जाकिरी ने दूसरे से हसद कर, पढ़ने वाले एक दूसरे से हसद कर कि उसकी मजलिस मेरी मजलिस। बाबा मजलिस लोगों से नहीं होती, मजलिस वो होती जिसको बीबी कबूल करे, बीबी कबूल करे वो मजलिस है। वो मजलिस नहीं है कि जब मैं बहुत लाइट्स लगा दूं, बहुत लोगों को बुला लूं और लोगों को दिखाने करूं तो वो फायदा क्या है। वो चीज को देखो मैं बार बार एक बार बोलता कि इंसान को चेंज आना चाहिए। मुहर्रम चेंज का नाम है, बार बार बोल रहा है कि चेंज का नाम है। ये मत सोच के जिंदगी गुजारो कि यू डोंट नीड टू चेंज, ये मत बोलो, इसलिए कि कोई परफेक्ट नहीं है। बाबा कोई परफेक्ट नहीं है, कोई है ही नहीं वैसा। मौला अली का क्या जुमला है, मौला अली मौला हुसैन के जरिए ये रिवायत है। मौला हुसैन कहते हैं कि प्लीज गौर से सुनो, कभी किसी मोमिन के साथ हसद मत करो। उसके बाद कहा कि जो तुमसे बड़ा है उसको तुम हमेशा नेक समझो, इसलिए कि उसकी जिंदगी ज्यादा है, हो सकता है उसने तुमसे ज्यादा इबादत की हो। ओके, जो तुमसे छोटा है उससे कभी हसद मत करो, इसलिए कि उसकी जिंदगी कम है, उसने हो सकता तुमसे कम गुनाह किया हो। जो तुम्हारे बराबर का है, एज में सेम है, उससे हसद इसलिए मत क्या करो कि तुमको तुम्हारे गुनाह मां याद है, उसके गुनाह नहीं मालूम है। देखो इस्लाम क्या परफेक्ट रिलीजन दे रहा कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के साथ रहना कैसा। बड़े को इसलिए नहीं करो कि बड़ा तुमसे ज्यादा इबादत किया होगा, हमेशा पॉजिटिव सोचो कि पॉजिटिव जब तुम सोचोगे तो तुम कभी किसी से हसद ही नहीं करोगे। ये बीमारी से अगर इंसान बच जाए ना, तुम यकीन करो कि फिर तुम्हारे साथ के सारे इश्यूज दूर हो गए। मौला हुसैन तुमसे राजी अगर ये बीमारी से इंसान बच जाए। लेकिन अफसोस कि हमारे पास तसव्वुर नहीं है, हम इस टॉपिक पे डिस्कस नहीं करते, हम इस चीज पे सोचते नहीं कि ये हसद है या क्या है। बड़े आसानी के साथ हम किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकते, ये बोलने वाला हुसैन के साथ नहीं हो सकता, ये बोलने वाला मुहर्रम की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहा। मुहर्रम में आप ये सोचो, मिसाल के तौर पे तुम्हारे घर में तुमने अजा खाना, माशाल्लाह न्यू जर्सी न्यूयॉर्क में हर जगह अजा खाने घरों में है, अल्लाह तुमको सलामत रखे, अल्लाह जरूर मिसाल में मिसाल दे रहा, बुरा नहीं मानना, मेरे घर में अजा खाना है न्यूयॉर्क में और मैं अजा खाना सजाया। क्यों सजाया, हमने मौला हुसैन को दावत दे के बुलाया कि मौला आइए मेरे घर में अजा खाना सजा, और उसी घर में मैं वहीं अजा खाने के पास बैठ के अपने घर में नॉर्मल लाइफ में सुबह से शाम तक मैं कोई गरीबत करता रहूं, मैं किसी के बारे में बात करते रहूं, तो फायदा क्या हुआ। तुमने हुसैन को दावत दे के बुलाया ना, तो तुम्हारा ये हो गया कि इतना एहतराम भी नहीं है हमारे पास। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, ये एहतियात कर रहे 10 दिन तुम्हारे पास अलम इस्ताद है, 10 दिन तुम्हारे घर में कोई चेंज आया, घर में कोई एंटर हो तो उसको मालूम है कि भाई इनके घर में कोई मोर्निंग हो गई, इनके घर में कोई गम है, तो घर का माहौल बदला। अगर घर का माहौल ही नहीं बदला, हम उसी तरह से जैसे कल थे वैसी आज है, तो देन व्हाट इज द यूज। ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस नहीं है, ये मारिफत का बात है। ये अपने आई नो थोड़ा सा ज्यादा बम्बार्डमेंट हो गया, मैं इसको रोक रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि कुछ ज्यादा बोलूं, बस इस पर इतने बात करना कि कोशिश करो, बस मैं एक ही बात बोलता, ट्राई योर बेस्ट, 24 घंटे में एक दफा कोशिश करो कि आज मेरे अमाल से मेरा मौला हुसैन राजी होते, कोई आज ऐसा काम कर लो जिसे हुसैन राजी होते। हुसैन एक दफा मुझे देख ले, मौला हुसैन अगर आपकी तरफ देखे, अगर आप ये कोशिश करते हैं कि आपकी तरफ हुसैन देखे, तो एक छोटा सा एक अमल देता। आप ये चाहते हैं कि मौला हुसैन आपको देखे, आप बोलेंगे प्लीज लेट मी नो कि मैं क्या करूं जो मौला हुसैन मुझे देखे। इतना सिंपल चीज दे रहा, आप सोच भी नहीं सकते। आप अपने बच्चों के साथ करना, ये रोज करना, इसलिए कि तुम्हारे घर में इस वक्त अजा खाना मिला है। बच्चों को लेके 4 सलाम करो, सिर्फ 4 सलाम, और ये 4 सलाम करो, देखो इसका सवाब, देखो कि मौला हुसैन तुम्हारी तरफ देखेंगे। सलाम वाजिब नहीं है, जवाब सलाम वाजिब है, सलाम वाजिब नहीं, जवाब है सलाम वाजिब। चार सलाम करो खाली, सलाम अलल हुसैन, वाला अली अब्न अल हुसैन, वाला औलाद अल हुसैन, वाला असाब अल हुसैन। आप बोलेंगे चार सलाम से क्या फायदा हो रहा, क्या मौला हुसैन मुझे देखेंगे? अब मैं आपको बता दें कैसा देखेंगे। दुनिया का उसूल है, न्यूजर्सी में आप लोग जिस मुल्क में रहते हैं वहां की तो ये तहजीब है कि एक दूसरे को जानते नहीं पहचानते नहीं एक दूसरे को विश करते करते हो। सब कॉन्टिनेंट में नहीं है ऐसा, टोल पे जा रहे सबसे पहले उसको देखकर हेलो हाय करते, बहुत अच्छी बात है, इस्लाम ने बताया। उसके बाद जब वो कोई चीज देता तो उसको थैंक यू बोलते, इस्लाम ने बताया, बहुत अच्छी बात है। सुपर मार्केट जा रहे, फार्मेसी जा रहे, ग्रोसरी के लिए जा रहे, जहां जा रहे जैसी एंटर है उसको तुमने हेलो किया, बहुत अच्छी बात है। और जब हेलो किया तो इधर उधर मुंह करके नहीं किया, उसको आंखों में आंखें डाल के बोला तुमने हेलो, उसको देख कर मुस्कुराए, तुम जानते नहीं पहचानते नहीं और उसने भी तुमको जवाब वैसे ही दिया मुस्कुरा के। दोस्तों अगर नहीं देखे वो इधर उधर देख रहा तो आप बोलेंगे इसको अखलाक नहीं है। अहले बैत मरकज है अखलाक के। अगर आपने मौला हुस अगर आपने सलाम किया, पहला सलाम क्या है बच्चों से करवाना कि सलाम अलर हुसैन। आपने जैसे ही कहा सलाम अलर हुसैन, हुसैन करबला से आपको पलट कर देखे और देख के कहा लेकर सलाम। सलाम वाजिब नहीं है, जवाब है सलाम वाजिब है। बात समझ में आ रही, जवाब है सलाम वाजिब है। उसके बाद आपने कहा वला अली अब्न अल हुसैन, जनाब अली अकबर ने आपको पलट के देखा। आप सोचो कौन कौन देख रहा, एक लम्हे में तुम्हारी जिंदगी बदल सकती। हुसैन ने देखा, इमाम की निगाह, रहमत की निगाह, फिर आपने कहा वला अली अब्न अल हुसैन, शहजादे अली अकबर ने आपको पलट के देखा, फिर आपने कहा वला औलाद अल हुसैन, औलाद अल हुसैन में सारे हुसैन के बच्चों ने आपको पलट कर देखा और अलेकर सलाम कहा, फिर आपने कहा वाला असाबुल हुसैन, असाबुल हुसैन में सारे हुसैन के असाब जिसमें जोहेब भी है, सईद भी है, हुर भी है, हबीब भी है, सब ने आपको पलट के सलाम किया। आप सोचो ये एक 10-15-20 सेकंड का सलाम आपकी जिंदगी को बदल देगा। चार सलाम खाली, रोज सुबह उठो शाम उठो आदत डालो सलाम करने की, घर से निकलते वक्त सलाम करो। जो शख्स घर से निकलते वक्त हुसैन को सलाम करके निकल रहा उसका जिंदगी का जामिन हुसैन इब्ने अली हो जाता। रिस्क के लिए जा रहे तो रिस्क का जामिन हुसैन इब्ने अली हो जाता। आप तसव्वुर कर रहे कि जब इंसान सलाम करके घर से निकलता और वापस आए तक उसकी जिंदगी का जामिन इमाम हुसैन है, और घर में एंटर हो तो फिर सलाम हुसैन बोलो, उससे फर्क यह पड़ेगा कि 24 घंटे तुम हिसार हुसैन इब्ने अली में आ जाओगे। 24 घंटे सर अपने मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतना सवाब है इसका। और यही चीज और ये सलाम अगर कोई इंसान कंटिन्यू करता रहे जैसे आप उसके बाद आप बोल रहे सलाम अली का गरीब अल गुरबा और सलाम अली की शहजादी मासूमा बोलते, उनको सलाम डेली करने का फायदा ये कि आप इमाम की ज्यारत को तो नहीं जा रहे लेकिन इमाम गरीब इमाम की ज्यारत का सवाब यह है कि अगर कोई शख्स रोज इमाम को सलाम करे तो पहली रात इमाम आके उससे मुलाकात करता है, इतना सवाब। फिर आपने हाथ रखो सर पर रखो सलाम अलैका या फरजंद जहरा अजल्ला ताला फरजो शहीद बोलो तो जमाने के इमाम से भी तुम्हारा कॉन्टैक्ट हो गया। इतने मासूमीन का हिसार अगर तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगेगी। तो ये इमाम को सलाम जरूर करना, इसलिए कि इस तरह से मुहर्रम का इस्तेमाल करो। बच्चे पूछे कि इतने सलाम क्यों कर रहे, हर रोज क्यों कर रहे, पहले नहीं करते थे? तो बोलो बेटा मुहर्रम आ गया, मौला हुसैन हमारे पास गेस्ट है, मौला हुसैन हमारे पास आए हुए हैं। तो वो ये तसव्वुर आएगा, ये फिक्र आएगी, तो फिर तुम्हारे घर में भी यहाँ बरकत होगी, तुम्हारी औलाद में भी बरकत होगी और बाद नजर बाद मुसलसल यही आपको अजर मिलता रहेगा। दोस्तों छोड़ के हुसैन को जिंदगी नहीं गुजार सकते, हुसैन के साथ जिंदगी गुजारो तो मजा आए। समझ रहे मेरी बात? ये कोशिश करो कि हमेशा, इसलिए कि मौला हुसैन की ज्यारत का एक अजीब अजर। अब मैं ज्यारत में तो मैं आप एक छोटा सा वाक्य बताता हूं कि अगर रोज 40 दिन कोई करबला मोहल्ला में जाके, हम अल्लाह हमको ज्यारत नसीब करे, करबला मोहल्ला में जाके अगर कोई 40 दिन इमाम हुसैन को सलाम करे 40 जुमेरात को, आप न्यूजर्सी में करें ये बात, ये अमल न्यूजर्सी में करके देखो। न्यूजर्सी इसलिए करबला में तो हम नहीं जा सकते, आप न्यूजर्सी में करिए 40 थर्सडेज अगर कोई शख्स ये इमाम की ज्यारत पढ़े तो उससे जमाने के इमाम की मुलाकात होती। ये अमल किसी और ने नहीं बताया, ये ऐसी शख्सियत ने ये अमल किया है कि जिसका एहसान पूरी शियत के ऊपर है, पूरी शियत के ऊपर जिसका एहसान है। सिक्स्थ सेंचुरी का वो इमाम का चाहने वाला आज काम दफा ने बताया, अल्लाह हमको मौला की ज्यारत नसीब करे, नजफ अशरफ की ज्यारत नसीब। जब आप नजफ अशरफ जाते हैं, मौला का सहन है, उसके बाद वो गोल्डन टोम है, उसके बाद इधर एक मीनारा है, इधर एक मीनार, दो ही मीनार है मौला के रोजे में, एक मीनार इधर एक मीनार उधर, फर्स्ट मीनार जो है उसके नीचे ये दफन है। उस इनकी लहर से, इनकी ग्रेव से इमाम अली अलैहिस्सलाम की जरी कितनी दूर है पता है आपको? हार्डली 10 to 12 steps, 10 to 12 steps इसे दफन, 10 या 12 स्टेप, इतनी नजदीक है ये इमाम अली के। हम सिर्फ कफन जाके मस करके लाके न्यूयॉर्क न्यूजर्सी में खुश हैं, बिल्कुल लाना, बिल्कुल लाना, ये वहां इतने करीब दफन है वहां पर। और ये तो इमाम अली के जमाने के शिया नहीं है, इमाम अली के जमाने का, ये इमाम अली का कंपेनियन नहीं, इमाम अली का सलमान जो है वो मदायन में, अबू ज़र रब्ज़ा में, अम्मार सीरिया में, मीसम कूफे में, कुमैल नजफ में, दूर। ये इतनी करीब 600 साल तक अली ने इनके लिए जगह रोकी है। आप समझ गए ये कौन है? अल्लामा हिल्ली, हिल्ली है कि जिसका एहसान है सिक्स सेंचुरी। प्लीज गौर से सुनो, ये उनका बताया हुआ अमल जो मैं आपको दे रहा हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ मुहर्रम के लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मज़लूम है करबला, कि मज़लूम है करबला हुसैन इब्ने अली की क्या शख्सियत है, मेरे मौला की क्या शख्सियत है, और मौला ने हमारे ऊपर करम कैसे किया कि हमको चुन लिया आजादारी के। आप खुद जानते हैं कि न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, अमेरिका, कनाडा, पूरी दुनिया में हजारों शिया है, हर आदमी तो मदीसे ही सुन रहा, हर आदमी तो आजादारी नहीं कर रहा, उनके पास टाइम ही नहीं है। अगर तुम आजादारी कर रहे तो तुमसे ज्यादा लकी कौन है, तुमसे ज्यादा खुशनसीब कौन है अगर आजादारी कर रहे? इतनी बड़ी बात। अल्लामा हिल्ली ये वो शख्सियत है कि जो अपने दौर का रियल अल्लामा, इन्हें शियत में जिसका एहसान मुजद्दिद कहा गया, जो मौला अली का ऐसा चाहने वाला कि जिसके मुनाजरे हैं पूरे, ऐसे ऐसे मुनाजरे, ऐसे ऐसे इन्होंने मुनाजरे किए कि ईरान की आज की पूरी शियत, पूरी ईरान की शियत जो है अल्लामा हिली की वजह से वो अली वली अल्लाह कहने लगे। इतना जहीन आदमी, इनके वो मुनाजरा मैं नहीं पढ़ रहा जो मशहूर मुनाजरा है, इनका एक अमल है इमाम हुसैन के लिए जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप ये करें मुहर्रम के लिए बेहतर, ये मुहर्रम ही के लिए बताया गया था कि फर्स्ट 10 डेज या फर्स्ट 40 डेज उन्होंने किया था ये अमल, पहली मुहर्रम से 40 अरबईन तक ये अमल किया था, तो 50 डेज हो रहे थे इन्होंने ये अमल किया था। क्या अमल है? सो सिंपल, आप न्यूजर्सी में करो, न्यूयॉर्क में करो, जहां जो जो सुन रहा मुझे मालूम है दर हुसैन में माशाल्लाह 1200 लोग पूरी मुझे मैसेजेज जो आ रहे, इतनी दूर दूर से लोग कहां कहां सुन रहे, सब कॉन्टिनेंट में सुना जा रहा है ये मदरसे इतनी सुबह उठ के। मौला आपको आबाद रखे दर हुसैन वालों का, अल्लाह इनकी तौफीकात में इजाफा करें, और इनका जो मकसद है अल्लाह इनके मकसद में इनको कामयाबी दे। और मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं कि देखिए दर हुसैन के शेर जरूर खरीदो, मैं अभी अल्लामा हिल्ली का वाकया कंप्लीट कर दूं, दर हुसैन के शेर जरूर खरीदो। क्यों खरीदो? ये हुसैन के दर के शेर है। क्यों खरीदो? हो सकता है एक मजलिस का स्पॉन्सरशिप तुम्हारी बख्शिश का सहारा बन जाए, हो सकता तुम्हारे जिंदगी की रुकावटें वो एक मजलिस की स्पॉन्सरशिप हो जाए। अभी मैंने एक रात में जो अहले बैत चैनल पे लंदन की मेरा चल रहा उस पर मैं मजलिस में मैंने ये बात बोली है कि अहले बैत चैनल पे जो मेरा शर चल रहा उसमें बात बोली है कि तुम लोग ये मत समझो, इसलिए हो सकता कोई सुना हुआ ये मजलिस जो यहाँ पे भी सुन रहा न्यूयॉर्क में, मैंने यही बात वहां पे की कि ये मत समझो कि तुम दोगे तो मजलिस होगी, तुम दोगे तो चैनल चलेगा, तुम दोगे तो दर हुसैन की पूरी जरूरत पूरी होगी, हुसैन के खजाने में कमी नहीं है, अगर तुम दे रहे तो यू आर लकी कि तुम्हारा पैसा लग रहा। समझ में आई बात? अगर तुम दे रहे तो तुम ये मत समझो कि तुम्हारी वजह से हो रहा। नो, हुसैन की ताकत इतनी बड़ी है, हुसैन कौन है? हुसैन की ताकत इतनी छाई हुई है, इतनी वसी है, फिर बोल रहा गौर से सुनो, इतनी वसी है, इतनी छाई हुई है कि ऐसे मालूम होता है कि बंदे में खुदा की शान आई है।
समझ में आई बात? ये मत समझो कि हमारी तरफ से दरे हुसैन चल रहा है या हमारी तरफ से कोई एक इमाम बार का चल रहा। नो, हम तो खुश नसीब है अगर मेरे मौला ने मुझे चुना बोलने के लिए तो मैं खुश नसीब हूं कि मौला ने मुझे चुना। मौला को जरूरत है एक लम्हे में, वो खादिर मुतलक का मजहर है यार। अल्लाह खादिर मुतलक है, उसके मजहर है ये लोग। एक सेकंड में तो वो कल, उनको क्या जरूरत है एक किसी के ऊपर निगाह करम कर दे। अरे किसी जर्रे पे कर दे तो वो आफ्ताब बन जाए, हम क्या है? समझ रहे मेरी बात? तो अगर आप दरे हुसैन मिसाल के तौर में, इसी दरे हुसैन में पढ़ा, इसी दरे हुसैन बोल रहा, ये कोई बुरा नहीं मानना कि वाई ही इज प्रोमोटिंग दरे हुसैन, बिकॉज मैं रात में सेलिंग इन दरे हुसैन। तो जहां पढ़ूंगा तो बोलूंगा ना, जहां खाऊंगा तो बोलूंगा नहीं, क्या बोल रहा जरूर। तो कोशिश ये करो कि मजलिस की स्पॉन्सरशिप लेना, मजलिस में शेयर खरीदो। अगर मिसाल के तौर पर आपको पता चले अमेरिका के बड़े बड़े कंपनीज, एप्पल कंपनी के शेयर्स ओपन हो रहे और बड़े सस्ते हो रहे, 200 पाउंड में हो रहे, 300 पाउंड में, 400 पाउंड में हो रहे, नहीं लेंगे आप? अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं, आपको मालूम है कि बाद में बिकेंगे तो हजारों में जाएंगे। कोशिश करता ना इंसान, अरे यार बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, रिटायरमेंट के लिए बेहतरीन प्लान है। मैं एक ही बात बोलता पूरे न्यूजर्सी वालों को, माशाल्लाह वहां पे 8, 9, 10 जितने भी इमाम, हर इमाम बरगा का शेर लो, हर इमाम बरगा का शेर लो और शेर लेके पकड़ के रखो और ये शेर को कैश करवाओ नीचे, अल्लाहुम्मा अर्ज़क़नी शफ़ात अल हुसैन, कि मौला हुसैन, मौला हुसैन मैंने आपकी कंपनी का शेर लेके आया हूँ। अगर वहाँ फरिश्ते पूछे कि तुमने, तुम क्या लेकर आए, तो बोलो हुसैन की कंपनी के शेर से, कि जो यहाँ पे भी काम आएंगे लाहौर में भी काम आएंगे। हुसैन किसी का नहीं रखता, ये याद रखना। अगर तुमको मौका मिल रहा तो डू समथिंग फॉर मौला हुसैन, ये जिम्मेदारियों में से जिम्मेदारी। मुहर्रम आया, एक हमारे लिए ब्लेसिंग का महीना आ गया, रहमत का महीना आ गया, ऐसा रहमत का कि इस महीने में मुलाकात इमाम हुसैन है। क्या बोल रहा है यार आपसे, मुलाकात इमाम हुसैन, अल्लाह महिली जैसी शख्सियत, यही दिनों में जिन दिनों में हमारी असदारी चल रही, इसीलिए मैं ये वाकया पढ़ा। एक दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं फर्जंद हुसैन से मुलाकात करूं, अपने मसलों को हल करूं। हमको कभी ख्वाहिश नहीं होती, बहरहाल वो अल्लामा थे, बड़ी ख्वाहिश हुई उनके कि यार मैं फर्जंद मौला हुसैन दौर के इमाम से मुलाकात करूं। मैं लड़का, लड़की, औरत, मर्द सबको बोल रही हूं, ये दिनों में करो ये अमल। मैंने जो आपको अमल दिया, सो सिंपल एंड सो स्मॉल, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट से ज्यादा, कि रोज दिन में 5 दफा करना है। अकेले, अकेले मतलब अमाल हो गए, नमाज हो गई, आपकी ज्यारत हो गई, खड़े के सिर्फ खिबला रूह होके बोलो सलाम अल हुसैन वाला अली अपना हुसैन। और जब सलाम अल हुसैन बोला ना, तो ये आप इमेजिन करना कि मौला हुसैन तुमको देख रहे, जवाब दे रहे, देख के जवाब दे रहे, निगाह हुसैन की वो ठंडक तुम्हारे चेहरे पे आना, वो ठंडक आना मौला हुसैन की, वो निगाह करम आना तुम्हारे, ये तसव्वुर करना कि मेरा मौला हुसैन मुझे जवाब दे रहा। ये सलाम करो, सलाम करने के बाद तो अल्लामा हिली ने ये इरादा किया कि मैं ये अमल करूंगा और करबला मौला जाके करूंगा। ऑल द वे वो हिले से जाते थे, गए और इन्होंने ये अमल करना शुरू किया। वापस जा रहे थे करबला मौला की तरफ, 36 डे था या 27th डे था, हिली जैसी शख्सियत, मशहूर बात है इनकी जिंदगी का बड़ा मशहूर वाक्य कि इमाम से मुलाकात, इमाम में भी ये वाक्य हुआ। नीयत ये थी कि मेरी मौला हुसैन, मेरे जमाने के इमाम से मुलाकात हो, फर्जंद हुसैन से मुलाकात हो और मैं अपने मसलों को हल करूं। तो इमाम से मुलाकात करने का बेहतरीन तरीका क्या ढूंढा? ये अमल ढूंढा कि जरिए हुसैन के जरिए इमाम के पास जाऊंगा। आपने देख लिया ये बात, हुसैन के जरिए कहां कहां जा सकता है इंसान। तो इन्होंने कहा, ये उन्होंने ये अमल किया। रास्ते में अल्लामा हिली अपने खच्चर के ऊपर, खच्चर के ऊपर अपना धुन में करबला मौला के हुदूद में दाखिल हो रहे। रास्ते में देखा कि एक जवान उनके पास आया, कुछ जानवर बकरियां कुछ साथ हैं, दोनों में गुफ्तगू हुई। चंद लम्हे गुफ्तगू के बाद अल्लामा, उस वक्त तक अल्लामा बन चुके थे, सही अल्लामा थे वो, बन चुके थे। तो उस वक्त अल्लामा हिली को ये एहसास हुआ, ये फील हुआ, यार ये कितना बड़ा आलिम है, मैं जो मसला बोल रहा बड़ी आसानी से मुझे समझा दे रहे, मैं नहीं जानता, मैं 40 साल के ऊपर के हो गए का, मैं तो हर मुसलमान आलिम को जानता हूँ, ये कौन कि मैं अभी तक नहीं जानते है कहाँ के, कि क्या अच्छे तरीके से इल्मी तरीके से हिंदी को समझाना मजाक था, अल्लामा है का इतने अच्छे तरीके से कितनी खूबसूरती से ये समझा रहे, और क्या इल्म है इनके पास, मेरा इल्म तो खतरा भी नजर नहीं आ रहा, अल्लामा कह रहे बार बार जो सवाल कर रहे जवाब, जो सवाल कर रहे जवाब, एक सवाल में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ दोनों में, अल्लामा ने उन्होंने आने वाले ने कहा नहीं इसका मसला ये, अल्लामा ने कहा नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, उन्होंने कहा नहीं हिली ये ऐसा है, तो अल्लामा ने कहा कि क्या कोई हमारे आलिम ने इस मसले को का जवाब दिया, तो उन्होंने कहा कि शेख सदूक की जो किताब है तहजीब उसमें यह मसला फुला पेज के ऊपर है, इतनी कॉन्फिडेंट से बोला कि हिली जैसी शख्सियत, हिली कोई मामूली शेख में आज के आगा सिस्तानी से बड़े, आगा सिस्तानी से बड़े, इतनी बड़ी शख्सियत है हिली की, तो जब उन्होंने कहा तो मान गए। उसके बाद इन्होंने पूछा कि आप इतने मेरे मसलों को हल कर, क्या आप ये बता सकते हैं कि आज के दौर में कोई अपने इमाम से कि करबला हुसैन और इमाम जमाना कि जरिया कौन है, मौला हुसैन, यही अय्याम ऐसा, यही दौर ऐसा, देखो मैं कितनी इंपॉर्टेंट डेज का मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि क्या ये पॉसिबल है कि आज के दौर में कोई अपने इमाम से मुलाकात करे, ये कहा हिली जो खच्चर पे आ रहे थे, जो चाबूक था, जो हंटर आप इंग्लिश में बोलेंगे जिससे आप घोड़े को खच्चर को आगे बढ़ाते हो, जमीन पे गिरा, आने वाले ने उठाया, उठा के हिली के हाथ में दिया, हिली के हाथ में देके कहा हिली तुझे अब भी शक है, तेरा हाथ तेरे इमाम के हाथ में, बस ये कहना था ये चौंके, अब जो सर उठा के देखा नजर नहीं है, करबला मौला में रहे, पूरा अमल कंप्लीट किया, वापस गए हिला जाके किताब को खोलो, जो पेज बताया था उसी पेज पे जो है वो रिवायत थी जो उन्होंने बताई, उसके अंदर उन्होंने बाकायदा ब्रैकेट्स में लिख के कहा कि ये हदीस को मेरे मौला ने मुझे मिलके बताया है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको आपने गौर किया कि जमाने के इमाम से मुलाकात के लिए भी मुहर्रम है, और आशूरा जब आएगा तो उस दिन भी आप कोशिश करना, पहला काम जो करना वो फुर्सत जमाने के इमाम ही को देना, इसलिए कि वारिस अजा, वारिस गम, वारिस अजादारी, वारिस हुसैन मेरा फर्जंद जहरा है, तो उनके लिए ये कोशिश करो कि तुम जितना हो सके, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा पहुंच जाए, अगर मैं ये चाहता कि मैं वहाँ पहुंचूं और इमाम के लिए कोई काम करूं, तो पहली चीज़ ये दुआ करो कि मौला हमको वैसे बनाओ, वैसे सादत दो कि हम आज़ादारी हुसैन के लिए हम आगे बढ़े, इसलिए कि दोस्तों जो आज़ादारी हुसैन के लिए काम करता वो हमेशा ज़िंदा रहता, आप इसको एक्सेप्ट करो, इसको एक्सेप्ट नहीं करो, जिन जिन घरों में आज़ादारी होती है उन घरों में देखो, और जिन घरों में आजादारी नहीं होती उनके घरों को देखो, कोई ना कोई प्रॉब्लम आता ही आता है, जहां हुसैन का जिक्र होगा, जहां ज़ियारत इमाम हुसैन होगी, वहां बरकतें रहमतें नेमतें फजीलतें वह पहुंचती है, इसलिए कि वादा हमारा नहीं है, वादा उस अल्लाह का है, वादा उन मासूमीन का है कि जहां जहां जिक्र हुसैन होगा वहां वहां फरिश्ते पहुंचेंगे। एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मौला आबाद
या अली,
मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। 45 मिनट की मजलिस हो गई, इसलिए कि ये अय्याम मैं बार बार कहता हूँ, अशरे अव्वल में पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने कहा कि 8 जगह अशरे चल रहे कंटिन्यूस, में रात भर का जागा हुआ, एक के बाद एक मजलिस पढ़ रहा हूँ, फिर मजमो, ये तो बीवी का करम है, बीवी का करम है और कुछ नहीं है, मेरी शहजादी, मेरी कोई ताकत नहीं है बाबा, ये ताकत है मौला हुसैन है, ताकत है शहजादी कौन है ने? कि बीवी ने जो मौका दिया, इसलिए कि जिंदगी जिंदगी हुसैन के लिए है, मौला हुसैन राजी हो जाए, कोई एक, मैं तो ये बोलता हूँ कि मेरी कोई एक मजलिस भी बीवी की बारगाह में कबूल हो जाए तो बख्शिश का सहारा है, बख्शिश का सहारा मजलिस हुसैन है, आमाल कुछ नहीं है, दामन बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं, आई डोंट हैव एनीथिंग, सिर्फ एक मजलिस की मैं बात कर रहा, मेरी शहजादी एक मजलिस एक्सेप्ट कर लेना तो आपकी बख्शिश हो जाएगी, मजलिस इसलिए कि हमारे पास है क्या, सारे अमल में मिलावट है, हर अमल में मिलावट है, तो कोशिश करो मेरे, आज की तीसरी तकरीर दर हुसैन का मेरा एक ही मैसेज था कि डू समथिंग फॉर इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के लिए काम करो, इमाम हुसैन से रिश्ते को मजबूत करो, और आज के दौर में रिश्ता मजबूत ज्यारत इमाम हुसैन से होता है, और उन चीजों को, उन बीमारियों को छोड़ने की कोशिश करो जिसको हुसैन ने यजीद से लेकर यजीद को कुचल दिया था। यजीद जिस चीजों, जिन चीजों को पसंद करता था, उन चीजों से अपने आप को थोड़ा सा महफूज कर लो। ये माह मुहर्रम, इसमें, इस मुहर्रम में तुम मौला हुसैन को कुछ तोहफा देने की कोशिश करो कि 10 मुहर्रम तक सोचो कि हुसैन ने किन किन चीज़ों से लड़ी थी, किन किन चीज़ों से हुसैन का यजीद का झगड़ा था, उनमें से कोई एक चीज़ अगर मेरी ज़िंदगी में है तो मैं ये दुआ करूँ कि मौला आज के बाद मैं नहीं करूँगा, इसलिए कि ये आपको पसंद नहीं है। ये हर लड़का लड़की सोच रहा, हर आदमी सोच रहा, क्या ये मत सोचो कि नहीं यार मेरे पास तो सब कुछ है। ये निकालो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जहन से निकालो कि I don't need to change myself। ये कभी नहीं बोलना, ये कभी नहीं बोलना, प्लीज ये कभी नहीं बोलना, ना कभी सोचना कि I don't need to change। ये तो बोलते हैं, इनका तो काम ही है बोलना। मैं नहीं बोलता, मासूम इमाम बोलते, अल्लाह के रसूल बोलते थे, मौला हुसैन बोल रहे थे, मौला अली बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा। मैं तो उनका मैसेज लेके एक मैसेंजर हूं जो आप तक दे रहा हूं। मेरी तो एक ही ख्वाहिश है कि एक लड़का चेंज हो जाए, एक लड़की चेंज हो जाए, बस बस। मैं पूरे माशरे का मैं जिम्मेदार थोड़ी हूँ। और खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, ये गलत नहीं समझो कि मैं ये समझ रहा कि सब वो है। नो, हर आदमी नेक है, हर आदमी आज़ादार है, हर आदमी हुसैन का चाहने वाला है, मुझसे ज़्यादा चाहने वाला। आई एम नथिंग। मैं अगर अपने आप को समझूँ कि मैं ज़्यादा चाहने वाला हूँ तो मैं सबसे बड़ा गुनाहगार। मुझे तो ये देखना है कि सामने वाला ज़्यादा चाह रहा मौला हुसैन से, उसकी आमाल, उसके हिडन इबादतें इतने पोशीदा इबादतें इतने कि मुझे पता भी नहीं। मुझे तो एक ही चीज़ सोचना है कि अपने आप को हाउ टू चेंज माई सेल्फ, हाउ टू चेंज माई सेल्फ। जब तुमको अब हर आदमी अपने बारे में सोचे और वो जिम्मेदारियों को पूरा करे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करे जो मौला हुसैन हमको दे रहे। दोस्तों मैं क्या बोलूँ, अगर जिक्र हुसैन में तुम कुछ काम करोगे, इतना भी काम करोगे, तुम्हारा नाम बाकी रहेगा, तुम जिंदा रहोगे, हमेशा जिंदा रहोगे। जितनी तारीख के वाकयात है उसमें आपको मिलेगा। जिन्होंने जरा भी काम किया मौला हुसैन के लिए, अपने मफाद को छोड़ के, अपने इंटरेस्ट को छोड़ के, उसको हमेशा जिंदा रहा। वरना मिट जाते दोस्तों, मिट जाते, रेज हो जाते, कोई पूछने वाला नहीं रहता। गरीब है लेकिन जब जिक्र में काम करता है, हुसैन के लिए काम करता है, वो हमेशा जिंदा रहेगा। ये मत समझो कि लास्ट ईयर कितने थे और आज ये साल कितने हैं, कितने सब चले गए, अच्छे अच्छे लोग चले गए, हमको जरूरी फिक्र हुई। हो सकता मैं भी जो चले जाता, उस आदमी का नहीं भी ठहर जाए, थोड़ा जिक्र करके जाना, उन्हीं का कर्म है ना, उन्हीं का कर्म है ना। वरना कौन कौन किसको पूछता है यार, कौन किसको पूछता है। ये हुसैन का जिक्र है इसके, जिसकी तरफ से तुम बचे हुए, इसके लिए हमेशा कोशिश करते रहना, हमेशा कोशिश करते रहना कि कहां से मुझे मौका मिले कि मैं कोई काम करूं। और ज्यादा कोशिश ये करो कि मजलिसे हुसैन को ज्यादा प्रमोट करो, जिक्र हुसैन को ज्यादा प्रमोट करो। आठवें इमाम का जमाना, आठवें इमाम, गरीब इमाम, अल्लाह हमको ज्यारत नसीब करे। बस आखिरी बातें हैं। आठवें इमाम के जमाने में जब भी कोई शायर आता था, पोएट आता था, उस जमाने में जाकिरी नहीं होती थी, उस जमाने में शायर आता था मर्सिया लिख के, जैसे अनीस कबीर मर्सिया लिखते। ये जाकिरी तो 100-150 साल की है। इमाम के जमाने में तो शायर मर्सिया पढ़ता था, वही मजलिस होती थी। जब भी कोई पोएट आता था इमाम के पास, तो इमाम उससे पूछते थे, अच्छा ये बता तूने मेरे जद के लिए कुछ लिखा है। वो कहता मौला मैं आपके पास आऊँ और लिख के ना लाऊं, आपके पास आऊँ लिख के ना लाऊं। तो इमाम क्या करते, प्लीज गौर से सुनो, इमाम क्या करते फौरन मजलिस का एहतमाम करते। जो मैंने अभी आपसे कहा, मैंने अभी आपसे यही कहा ना कि मजलिस का एहतमाम करना। अगर लॉकडाउन में मजलिस हो रही तो फर्शा बिछाओ, ये एहतमाम है, प्रॉपर बैठो। ये नहीं कि रिलैक्स हो के सोफों पे, जिनकी जो मजबूर है वो अलग है। मैं हत्या करने जवानों को क्या हुआ, बड़े पैर पे पैर डाल के बैठे थे। आपको मालूम है कि फिर ये बिलीव नहीं है तुम्हारा कि बीवी आई है। मजबूरी हर चीज अलग है, नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूं। अगर तुम ऐसा बैठोगे तो तुम्हारी औलाद भी ऐसी बैठेगी। आप समझ रहे हैं उनको, उनका कल्चर क्या करे, तुम कल्चर क्या सिखा रहे। तो फर्श बिछाओ, इमाम क्या करते थे फर्श बिछवाते थे, पर्दा डलवाते थे, औरतों को सैतानियों को कहते थे पर्दे के पीछे आओ, और खुद नीचे बैठते थे नीचे फर्श पे, जाकिर को बोलते थे तुम मिंबर पे। उनकी जिंदगी का ये मशहूर वाकया था। तो जाकिर हाथों को जोड़ के बोलता मौला आप नीचे बैठे, मैं ऊपर बैठ, कहते था मेरे जद का जिक्र ऊपर बैठ के करो। हर वक्त जब शायराना मजलिस कर रहे। तो लोगों ने कहा मौला आप आज कोई गम की तारीफ तो नहीं, आप इतनी जिक्र करते अपने जन का, इतनी मजलिसें करते, करबला का इतना जिक्र करते। इमाम ने पलट के कहा तुमने गदीर को भुला दिया, अब हम करबला को भुलाने नहीं देंगे। आप समझे ये बात मेरी, इमाम का जुमले, इमाम ने कहा तुमने गदीर को भुला दिया, अब हम करबला को भुलाने नहीं देंगे। तो इमाम जब इमाम ने भुलवाना चाह रहे तो हम औलाद को करबला बताओ। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आज 1422 मुहर्रम की, क्या औलाद को बताओ करबला, इतना उनको बता दो कि उनके ब्लड में करबला आ जाए। बस एक सलवात पढ़ ले बाबा से पलट। बस दोस्तों शबे तीन मुहर्रम, अब आप थोड़ी देर के बाद आपके पास शबे तीन आ जाएगी। तीन मुहर्रम गुजर रही आपकी, शबे चार आ जाएगी। ये अय्याम तीन तारीख तीन मुहर्रम को एक ऐसे शहीद का जिक्र है पूरी दुनिया में कि जो हुसैन का सफीर था, हुसैन का एम्बेसडर था, हुसैन का एनवॉय था। आप समझे ये कौन, अल्लाह हमको कूफे की ज़ियारत नसीब करे। मस्जिद कूफा में जब मौला के घर से आप जाते हैं मस्जिद कूफा, और उस जगह पे जाते हैं कि जहाँ 19 रमज़ान को मौला को ज़रूरत लगी, उसके बाद सामने उस रोज़े में जाते हैं कि जिसका नाम था मुस्लिम इब्ने अखील इब्ने अबू तालिब। दोस्तों ये बहुत बड़ी 9 ज़िलहिज को अरफे के दिन आपने मजलिसें की हैं मुस्लिम की। पहला शहीद है करबला का, पहला शहीद है करबला का। कितनी तेज़ी से ये दिन गुजर गए, तीन मुहर्रम भी गुजर गई है, अब रात आ गई चार की। सिर्फ तीन दिन या चार पाँच दिन रह गए, छः दिन रह गए, उसके बाद फातिमा के लाल की ज़ाहरी ज़िंदगी की आखिरी रात आ जाएगी। आप लोग जहाँ भी बैठ के मेरी मजलिस सुन रहे इस वक्त, अगर सोफों पे चेयर्स पे बैठे हुए तो प्लीज़ रिमूव योर शूज़ एंड चप्पल एंड सिट प्रॉपरली फॉर 5 मिनट्स। कुछ नहीं चाहिए मुहर्रम में बीबी को, तुम्हारे दो आंसू चाहिए। अगर उस हुसैन पे क्रिया करना, ये मत समझो कि तुम रो रहे। हुसैन की भी एक बेटी थी, रोना चाहती थी, शिमर इतने तमाचे मार रहा था कि सकीना रो नहीं सक रही थी। पहले तमाचे पे सकीना ज़मीन पे गिर गई थी, बेटा मौजूद था लेकिन इतने ताजियाने बुलंद होते थे कि चौथा इमाम तड़प के कह रहा था फूफी अम्मा ये मेरे बाबा का लाशा है और मैं दफन नहीं कर सकती। मौला आबाद रख, आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना, तकल्लुफ से मत रो। बीबी जहरा ने यही कहा, छठे इमाम ने क्या कहा था अबू बसीर से कि अबू बसीर तू मेरे जब पे रोता नहीं है, तो अबू बसीर ने कहा मौला मेरा रुमाल पूरा गीला हो गया। इमाम ने कहा ऐसे नहीं रोते अबू बसीर, मेरे जब पे ऐसे रो के जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की मैयत पे रोती है, इस तरह क्रिया करो जैसे मेरी दादी फातिमा रोती है जब बीबी हाय हुसैन कहती है तो ज़मीन और आसमान रोने लगते। मौला आपको आबाद रखे, मौला आपको खुश रखे। अल्लाह जो जो लोगों ने दर हुसैन जिन मजलिसों को स्पॉन्सर किया, अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफा करे। मौला तुम्हारी आवाज़ें बुलंद होगी। मौला आबाद रखे। दोस्तों उस सफीर का जिक्र है कि जो हुसैन के पैगाम को लेकर चले थे, ये इतने मौला हुसैन के ट्रस्टेड थे। मेरे जुमले गौर से सुनो, ऐसा ट्रस्टेड सफीर था कि इमाम ने जो लेटर लिखा था कूफियों के नाम पे मुस्लिम इब्न अखील को जो दिया था, उसमें जुमले क्या थे हुसैन के, गौर से सुने। उसमें जुमले ये थे कि मुस्लिम के हाथ पे बैत करना ऐसा है जैसे तुमने मेरे हाथ पे बैत की। अल्लाह अकबर, इमाम वक्त निकला किसी। और आपको मालूम है जनाब मुस्लिम की जो ज़ियारत है और मौला अब्बास की जो ज़ियारत है उसके अल्फाज बिल्कुल एक है। कभी सोचा, कभी गौर किया, मौला अब्बास की ज़ियारत के जो जुमले हैं और मुस्लिम इब्न अखील की ज़ियारत के जो जुमले बिल्कुल एक है। ये ज़ियारत किसी मौलवी या मुज्तहिद ने नहीं लिखी, ये ज़ियारत इमाम की ज़ियारत नस से मासूम है। हर ज़ियारत के पीछे नस से मासूम है। जनाब मुस्लिम और जनाब अब्बास की ज़ियारत के जुमले सुनो जनाब, अब जाना जनाब मुस्लिम की, तो ये पढ़ना आप देखना क्या है। अब मौला अब्बास की ज़ियारत सेम वर्ड्स है, सेम वर्ड, अस्सलाम अलैका या अब्दस सालेह वल मुतियो लिल्लाह वले रसूले वले अमीर अल मोमिनीन वले हसन वले हुसैन या अफजल शहदा। कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा? इमाम वक्त, जमाने का इमाम बोल रहा। क्या सलाम अलैका या अब्द साले? अगर इमाम किसी को बोले ये अब्द साले है, अल्लाह का साले बंदा है, तो इसमें कोई शक है? इतनी बड़ी बात, सनद है मौला की, सनद है कि ए अब्द साले। उसके बाद क्या कहा? सिर्फ अल्लाह का साले नहीं बल मुतियो लिल्लाह है, अल्लाह का मुती भी है, ओबीडियंट भी अल्लाह का। फिर क्या कहा? वले रसूल है, रसूल का भी मुती है। वले अमीर अल मोमिनीन, अमीर अल मोमिनीन का भी मुती है। फिर क्या? वले हसन वले हुसैन, ये हसन और हुसैन का भी मुती है। उसके बाद क्या? सलाम अलैका ये अफजल शहदा, अगर इमाम किसी को बोले ये अफजल शहदा है, तो उस शख्सियत का क्या मकाम है मुस्लिम का। और आपको दूसरी एक फजीलत बताओ जरा, मुस्लिम क्या तड़प के रोएंगे? 28 ईयर्स के थे सिर्फ 28 ईयर्स के, मौला अब्बास 32 ईयर्स के, ये 28 ईयर्स के। दोनों की ज्यारत के जुमले एक, अपने दौर की एक ताकत का एक पावर का नाम है। हुसैन ने तकसीम कर दिया था ताकत। उसके बाद मैं बोलूं जनाब मुस्लिम के बारे में ये है कि जो आपका चेहरा था, चेहरा वो शबीह पैगंबर थे। जनाब अली अकबर बाद में आए, खानदान अहले बैत का ये पहला शबीह पैगंबर है। आपको हैरत होगी ना, खानदान फैमिली ऑफ प्रॉफिट का ये पहला शबीह है जो सूरत में बिल्कुल रसूलुल्लाह के जैसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि जब चलते थे मुस्लिम तो पुराने जो लोग थे मदीने के खड़े हो जाते थे कि रसूल की जवानी जाए। इतनी शबीह शहजादी अली अकबर तो बाद में 18 साल के थे या 28 साल, 10 साल पहले, और चेहरा बिल्कुल रसूल की तरह, और आपकी आवाज जब आप बात करते थे ऐसे लगता था जैसा मेरा मौला बात कर रहा, बिल्कुल इमाम अली की आवाज, बिल्कुल मौला की आवाज, ऐसा लगता था जैसा मेरा मौला बात। हुसैन ने जो कूफा भेजा था, इमाम का हर अमल मसलियत से खाली नहीं होता, इमाम ने जो भेजा था वो सिर्फ इसलिए भेजा था कि कूफियों को बताए कि मैं, हमारे पास मोहम्मद की शबीह भी है, हमारे पास अली की शबीह भी। ऐसा लगता था जैसे मेरा मौला बात कर रहा। लेकिन ये ऐसा गरीब सफीर जब गया तो हजारों लोगों ने बैत की, हजारों लोगों ने बैत की। वो वक्त आया जब जालिम इब्ने ज़ियाद गवर्नर बनकर आया, तो एक ऐसा लम्हा आया, ऐसा लम्हा आया कि मगरिब के वक्त मुस्लिम जब नमाज पढ़ा रहे थे तो लोग थे, जब इशा की नमाज पढ़ के हटे तो पूरी मस्जिद खाली हो गई थी। कूफी ला यूफी है, कूफियों पे कोई भरोसा नहीं। रात का वक्त है, मुस्लिम जाए तो कहाँ जाए? दोस्तों आज नया शहर, नई जगह, कूफे की गलियों में से मुस्लिम जा रहे अकेले बिल्कुल, और एक घर के पास जाके अखील का बेटा ठहर गया। दोस्तों ये करबला का पहला शहीद है, पहला शहीद, और ये मौला खड़ा हो गया। तो थोड़ी देर के बाद सामने का जो घर था, उस घर की जो औरत थी, मालिक थी, वो अपने बच्चों की तलाश में दरवाज़ा उसने खोला तो देखा एक बड़ा शरीफ इंसान बाहर सर झुका के खड़ा हुआ है। तो इस औरत ने कहा कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों ठहरे हुए हो, जमाना पूरा शोभ है, घर क्यों नहीं चले जाते? तो मुस्लिम ने सर को झुका के कहा जिसका कोई घर ना हो वो कहाँ गया। ये सुनना था, उस खातून ने कहा कि तुम चेहरे से तो बड़े नेक और शरीफ मालूम होते हो, कहाँ के रहने वाले हो? तो मुस्लिम ने कहा मैं मदीने का रहने वाला। मदीने का नाम सुना, चाहने वाली थी, हुसैन याद आ गए, बीबी ज़ैनब याद आ गई, कहा मदीने में कहाँ रहते हो? तो कहा मैं महले बनी हाशिम में रहता हूँ। बस वो तड़प गई, कहा महले बनी आपका नाम क्या है? तो मुस्लिम ने कहा मेरा नाम मुस्लिम इब्ने अकील इब्ने अबू तालिब है। तो रोने लगी, हाथों को जोड़ के कहा आखा बाहर ठहरे में, आप मेरे घर में आइए बरकत। घर गए, जो कुछ रोटी खाना था रोटी खाई, रात गुजारी, सुबह में नमाज से तहज्जुद पढ़ रहे थे, फजर की नमाज अदा की, कानों में घोड़ों के टापों की आवाज आई, समझ गए कि इब्ने ज़ियाद ने लश्कर भेजा है। मुस्लिम अखील का बेटा है, हुसैन का अब्बास का भाई है। तलवार टेक कर मुसल्ले से उठा, जब तलवार टेक कर उठा तो उस मोमिना ने कहा कि आखा बाहर मत जाएं, लश्कर बड़ा मालूम होता। तो अजीब बनी हाशिम का खून रगों में दौड़ने लगा, कहने लगे कि अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो ये लश्कर को पता, ये लोग तेरे घर में आ जाएंगे, और जब तेरे घर में लश्कर आ जाएगा तो तेरा पर्दा ज़ाया हो जाएगा, इसलिए मुझे जाना लाजिम है। मैं हाथों को जोड़ के बोलूँ, मौला आपको एक कनीस के पर्दे का इतना ख्याल है, जरा शाम गरीबा में आके देखो कि सैदानियों के सरों से चादरें छीनी गई, बच्चों को तमाचे मारे गए। बस दोस्तों, अखिल का बेटा बाहर आया, खूब जंग की, बहादुर का लाल, इतनी जंग की, लड़ते हुए धोखे से मुस्लिम को पकड़ा गया, रस्सियों में झकड़ कर जब इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया तो मुस्लिम का यह हाल था कि सर उठा हुआ था, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे थे, सीना तना हुआ था। यहाँ पे एक अजीब रिवायत है कि वाकई करबला के कुछ अरसे के बाद एक कूफे का शख्स मदीने मुनव्वरा आया, आके चौथे इमाम से कहने लगा, मौला मैं उस वक्त कूफे में था जब आपके चचा को पकड़ के लाया गया। बोला, लेकिन जब आपका चचा आया तो उनका सीना तना हुआ, सर उठा हुआ, आंखों में आंखें डाल के इब्ने ज़ियाद से बात कर रहे थे। उसके बाद कहता है, मौला मैं उस वक्त भी मध्य कूफे में था कि जब आप आए दरबार में इब्ने ज़ियाद के, लेकिन मौला आप जब आए तो आपका सर झुका हुआ था, आंखें नीचे थी, आपका सीना उठा हुआ नहीं, सर झुका के चल रहे थे, नीचे आंखें करके बात कर रहे थे। उसके बाद कहता है, मौला इमाम तो सबसे बहादुर होता, ये क्या वजह है कि आपका सर झुका हुआ था, आपका चचा का सर बुलंद था, बस ये सुनना था। चौथे इमाम तड़प के रोने लगे, कहा तूने इंसाफ नहीं किया, अरे जब मेरा चचा आया तो अकेला आया, लेकिन मैं जब आया तो मेरे साथ अली की बेटियां थी, मेरी माँ बहने नंगे सर थी, मैं आंखों में आंखें डाल के कैसे बात करता, अरे कैसी शर्म की बात थी अली की बेटियां मेरे साथ है। अजीजों, इब्ने ज़ियाद को के दरबार में मुस्लिम को पेश किया, मुस्लिम को देखकर ज़ालिम इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि इनको दारुल अमारा की बुलंदी पे लेके जाओ और सर को कलम कर दो। जब ऊपर गए दारुल अमारा की बुलंदी पे, मुस्लिम ने दो रकअत नमाज पढ़ी और उसके बाद मक्के का रुख करके कहा, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या अपना रसूल अल्लाह। अजीजों, बड़ा गौर से सुनना, जो हम तुम नमाज के बाद ज़ियारत पढ़ते हो, ये सुन्नत मुस्लिम इब्ने अखील है। मुस्लिम ने पहली मरतबा मुस्लिम ने पढ़ी थी ज़ियारत, जो हम नमाजों के बाद ज़ियारत पढ़ते, इसलिए कि उस वक्त मुस्लिम जानते थे कि मौला हुसैन मक्के में जब मुस्लिम चले थे तो सलाम किया, सलाम करने के बाद इधर जैसे ही सलाम किया, मौला हुसैन एक जगह ख़याम किए हुए थे, हुसैन ने कहा अलैका सलाम, अलैका सलाम, फिर फौरन इमाम हुसैन की ज़बान पर निकला कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सुनना था, बीवी ज़ैनब घबरा गई, शहजादी ने आके कहा कि भैया ये कलिमात तुम्हारी ज़बान पे क्यों जारी हो रहे। तो इमाम ने शहजादी को करीब बुलाया, कूफे की ज़मीन की तरफ इशारा किया, तो बहन ने दूर से देखा कि भाई के गले पे खंजर है। ज़ैनब तड़प गई कि हाय मुस्लिम के गले पे खंजर, मैं हाथों को जोड़ के बोलूं, बीबी ज़ैनब आज आप दूर से देख लें कि भाई के गले पे खंजर है, कल करबला में तले ज़ैनबिया पे आप होंगी, सामने हुसैन होंगे, मेरे मौला हुसैन के गले पे खंजर होगा, आप फरियाद करेंगी। बस दोस्तों, मैंने मजलिस खत्म कर दी, वहीं पे बैठी हुई थी शहजादी, मौला हुसैन ने कहा कि बहन रुकैया बिन्त मुस्लिम को लेकर आओ, बस मजलिस खत्म कर दी मैंने। रुकैया जो मुस्लिम ने अखील की यतीम बच्ची थी, 5-6 साल का सिंध था, बीवी ज़ैनब उनको लेकर आई, मुस्लिम ने अपने पहलू, मुस्लिम की यतीम को हुसैन ने अपने पहलू में बिठाया, सर पे हाथ फेरा, कानों में गोशवारे पहनाए, अहले बैत की घर की बच्ची थी समझ गई, कहने लगी चचा आप तो ऐसे सुलूक कर रहे हैं जैसे किसी यतीम के साथ किया जाता। बस दोस्तों, ये सुनना था, मौला हुसैन ने सर पे हाथ रख के कहा बेटी तेरा बाबा मारा गया, लेकिन अपने आप को यतीम मत समझो, अभी हुसैन जिंदा है। फिर बोल रहा अभी हुसैन जिंदा है। अजीजों, वही सकीना खड़ी हुई थी जो ये मंजर देख रही थी कि मेरा बाबा यतीमों के साथ कैसे सुलूक कर रहा, लेकिन शाम गरीबा आखिरी खैमा जला, हुसैन की यतीम बाहर आई, पहला तमाचा पड़ा, सकीना जमीन पे गिर गई, फिर उठा के दूसरे रुखसार पे मारता, सकीना ने पुकार के कहा बाबा मैं यतीम हो गई, बाबा मेरे कान जख्मी हो गए। परवरदिगार मेरे मौला हुसैन के मसाहिब का वास्ता, मेरी शहजादी सकीना की मुसीबतों का वास्ता, हमारी ये मुख्तसर सी मजलिस को कबूल कर ले। परवरदिगार मेरी शहजादी के मसाहिब का वास्ता, ये मजलिस बीबी जहरा की बारगाह में कबूल हो जाए। हमारे गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ़ कर दे। जन्नतुल बकी जन्नतुल मौला जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पर साया करके रोशन कर दे। फरजंद जहरा मेरे इमाम ज़माना को सलामत रख। सीरिया में सैलानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा। दुनिया भर में इस वक्त जो जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमा, और जो बीमारियाँ हमारे जिस्मों में उसको दूर कर दे, हर आने वाली बीमारी से महफूज रख। परवरदिगार इमाम के जहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा पढ़े जो आज दर हुसैन की मजलिस को जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया था उनके लिए, अपने अपने सारे मरमीन हमारे उलमा ज़ाकिरीन मुश्तहिदीन मतदार मर्ज आलम के लिए और मेरे वालिदैन के लिए भी पढ़ दें।